बोल दो जरा उमंग से एक बार ओम शांति। बारिश की बाधाओं को पार करके आप हॉल में पहुंच गए हैं, आप सभी का स्वागत है। हमारे बुजुर्ग महात्माएं भी पहुंच गए हैं। टॉपिक बहुत सुंदर है, हम सभी के रोज के जीवन से जुड़ा हुआ है। चाहे आप गृहस्थ में हैं, आश्रम में हैं, किसी कार्य में हैं, हर मनुष्य को दूसरों के साथ रहना ही है। अकेला तो कोई भी नहीं है, परस्पर सुखद व्यवहार, प्रेम का वार्तालाप, अपनापन हमारी जीवन की इस यात्रा को बहुत आनंदित कर देते हैं। आज हम चर्चा करेंगे कैसे संबंधों में मिठास भरे और कहां गड़बड़ हो रही है। अगर हमें उस गलती का आभास हो जाए जो हो रही है संबंधों में, तो हम उसको ठीक करके जल्दी ही इस जीवन की यात्रा का परम आनंद प्राप्त कर सकते हैं। जब हम साधनाओं के मार्ग में भी आते हैं, सब जानते हैं, अगर परस्पर टकराव हो तो मन भटकता है, एकाग्रता होती नहीं। इसलिए बहुत अच्छे सामंजस्य की आवश्यकता होती है। मैं आपसे कुछ पूछूंगा भी, क्योंकि गृहस्थ में रहने वाले भी बहुत भाई बहने बैठे हैं। देखिए, पिछले 10-12 सालों से एक विशेष समस्या हमारे देश में भी परिवारों में उभर गई है, आप उससे परिचित होंगे, और वो है डिवोर्स, तलाक। वो तीन तलाक वाली बात हम नहीं कर रहे हैं, वो तो सरकारों का काम है। हमारी जो एजुकेशन है, इसने मनुष्य को विनम्र नहीं बनाया, क्या दे दिया? बोलो, आपको हिस्सा लेना जरा चर्चा में। अहम बढ़ा दिया है, और इस अहम के कारण संबंधों में बहुत कड़वाहट होती जा रही है। कोई भी झुकने को तैयार नहीं है, लेकिन हम सबको याद रखना है, जो झुके वही महान है, जो अकड़ कर रहे अपने अहम में, अपने ईगो में, जो अकड़ कर रहे, अकड़ कर रहना किसकी पहचान है? अरे वाह, आपने देखे हैं शायद बहुत मुर्दे, तो अकड़ कर रहना मुर्दों की पहचान है। उस मनुष्य का जीवन भी कुछ ऐसा ही हो जाता है जो सदा अहम के इस अहम की जकड़पन से टाइट रहते हैं, बिल्कुल अकड़े रहते हैं। इस पे हम प्रकाश डालेंगे आज। एक और सुंदर चीज, मनुष्य के मन में आज कामनाएं बहुत हो गई हैं दूसरों से, एक्सपेक्टेशंस बढ़ती जा रही हैं, देने की भावना कम, लेने की भावना ज्यादा है। एक और बात, संसार में बहुत कम लोग हैं जो अपनी गलती को स्वीकार करके, उसे पहचान के, उसे बदलने का सोचते हैं। अधिकतर लोगों की उंगली दूसरों की ओर रहती है, ये दोषी हैं, ये सुधर जाएं तो हमारे घर में सुख शांति आ जाए। ये कई तो ऐसा भी कह देते हैं, ये कभी नहीं सुधरेंगे। सुधारना भी चाहते हैं और साथ में वरदान भी दे देते हैं। मैं श्राप नहीं कहूंगा कि ये कभी नहीं सुधरेंगे। तो हमें अपने को बदलने की दृढ़ इच्छा पैदा करनी है अपने मन में। इसी से मैं लेता हूं। एक मैं आपको सुंदर सी एक प्रत्यक्ष में वैज्ञानिक की एक घटना भी सुनाऊंगा, जिसको सुनकर सभी ये सीखेंगे कि हमें अपने बच्चों से कैसा व्यवहार करना चाहिए। पहले हम चले, हमें खुद को बदलना है, जिसको महान बनना है, जिसको संबंधों में मधुरता लानी है, और जो अध्यात्म के मार्ग पे चल रहे हैं, जिन्हें परफेक्शन की ओर चलना है, जो अपने किसी महान लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, मुझे स्वयं को बदलना है। आप सबने हमारे यहां एक स्लोगन सुन लिया होगा, स्वयं को बदलेंगे तो संसार बदल जाएगा। और हम सब के लिए जो साधना के फील्ड में हैं, बाबा ने एक बहुत अच्छा सूत्र दे दिया है, जो स्वपरिवर्तन करते हैं विजय माला तो उनके ही गले में पड़ती है। हमें अपने को बदलना है। मैं उदाहरण ले लेता हूं, पति पत्नी का झगड़ा है, दोनों की उंगली एक दूसरे की ओर है, तुम्हारी गलती है, वो कहता तुम्हारी गलती है, और जब तक कोई एक झुककर अपनी गलती स्वीकार न करे तब तक समस्या का समाधान नहीं होगा। संसार में जिस भी परिवार में स्त्री पुरुष के झगड़े हैं या नई मैरिज हुई है, चल नहीं रही है, बहुत बड़ी समस्याएं हो गई हैं परिवारों में, 6 मास भी शादियां नहीं चल रही हैं, 1-2 साल में डिवोर्स हो रहे हैं, टेंशन बढ़ती जा रही है, इस कारण बहुतों को नींद नहीं आती है, बहुत लोग डिप्रेशन के शिकार होते जा रहे हैं, ऐसे केस में मैं एक और प्रैक्टिकल उदाहरण दे देता हूं। एक स्त्री पुरुष मेरे पास आए, सच्ची घटना, दोनों की आयु 40-42 साल के आसपास होगी, बैठते ही मुझे कहा, भाई जी हम दोनों बहुत लड़ते हैं, खुला बिल्कुल पहली लाइन। मैंने पूछा क्या करते हैं आप दोनों, कहा हम दोनों ही लेक्चरर हैं। क्वालिफिकेशन, दोनों ने ही एमए एमफिल किया है, पीएचडी करने वाले हैं। मैंने पूछा दोनों से, अच्छा सच सच बताओ तुम दोनों में बुद्धिमान कौन है। अब दोनों एक दूसरे को देखने लगे, दोनों ही तो बराबर पढ़े लिखे हैं, दोनों ही बुद्धिमान हैं। मैंने कहा अच्छा चलो, आपके चुप रहने से मैं समझ गया कि दोनों ही बुद्धिमान हो। मैंने दूसरा प्रश्न किया, ये बताओ दोनों में समझदार कौन है, बताओ किसने उत्तर दिया होगा कि मैं हूं। बताओ, नहीं, बहन ने उत्तर दिया तुरंत, मैं समझदार हूं। मैंने ये नहीं कहा भाई नहीं है, फिर आगे नहीं पूछा, मैंने इतना ही बताया जो समझदार है उसको झुक कर चलना चाहिए। आपका झगड़ा समाप्त, एक बोले दूसरा जो समझदार है वो चुप रहे। हम छोटी बातों में डिबेट करने लगते हैं, बहस करने लगते हैं, संवाद बिगड़ जाते हैं, विषैले हो जाते हैं संबंध, न जाने क्या क्या बोल देते हैं, कई तो ऐसा बोल देते हैं कि लोग उसे भूल ही नहीं पाते जीवन भर। तो बहुत अच्छा सूत्र सभी सामने रखेंगे, झगड़े ना हो, आई एम राइट, मैं राइट हूं, इस विचार को थोड़ा सा हटाना है। राइट आप हो सकते हैं पर फॉर टाइम बीइंग थोड़ा अपने को हल्का कर देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए अपने विचार को। जब हम हल्के होंगे, जब हम अपने को रियलाइज करेंगे तो दूसरा व्यक्ति भी रियलाइज करेगा, संघर्ष खत्म हो जाएंगे। पसंद है ये बात? पसंद है? मैं नहीं कहूंगा आप सुन के अच्छा अच्छा कह के और घर चले जाओ। आज सबको अपने में कुछ ना कुछ परिवर्तन लाना है। रेडी हैं सभी? रेडी हैं बहने? पहले बहने बदलेंगी पहले या भाई? सब बदलेंगे, जो बदले वो महान बने। मैं थॉमस एडिसन की कहानी पहले ही सुना देता हूं। जब वो छोटा बच्चा, थॉमस एडिसन एक वैज्ञानिक हुआ जिसने बल्ब का आविष्कार किया। बिजली तो पता चल गया था बिजली का, लेकिन बिजली को लाइट में बदलना है, उसे फिलामेंट का निर्माण करना था, रिसर्च करनी थी कि बिजली को प्रकाश में कैसे बदला जाए। बिजली से पंखा चल रहा है, लेकिन इसको लाइट में बदल दिया जाए। बल्ब बनाया उसने, और लोग तो कहते हैं बहुत बार वो असफल हुआ, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। आखिर उसकी रिसर्च से संसार आज जगमगा रहा है। यदि वो निराश हो के हार मान के छोड़ देता तो शायद हम इतनी जगमगाहट न देख पाते। उसकी कहानी है, जब वो छोटा बच्चा था, स्कूल में पढ़ता था, तो स्कूल के टीचर की ओर से मां को लेटर आया। लेटर में क्या लिखा था वो लास्ट में बताया जाएगा। बच्चे ने देख लिया और पूछा, मां मैडम ने क्या लिखा है? कहा, बेटा इसमें लिखा है तुम्हारा जो बच्चा है वो बहुत जीनियस है, बहुत बुद्धिमान है, हम उसको नहीं पढ़ा सकते। तो उस मां ने कहा, तुम्हें मैं ही पढ़ाऊंगी। उसने उसको पढ़ाया और वो बहुत प्रसिद्ध वैज्ञानिक बना। मां की मृत्यु हुई, वो सब सामान देख रहा था, वो पत्र भी मिल गया जो उसकी टीचर ने उसकी मां को लिखा था। उसने वो पढ़ा, क्या लिखा था? तुम्हारा बच्चा बहुत ही बुद्धिहीन है, इसको हम नहीं पढ़ा सकते। समझ गए ना राज? उसके पास बहुत कम बुद्धि थी, पर मां ने उसे कहा, तुम बहुत जीनियस हो, बहुत बुद्धिमान हो, मैं ही तुम्हें पढ़ाऊंगी संसार में, और कोई तुम्हें नहीं पढ़ा सकता। देखो बात को कैसे पॉजिटिवली टर्न कर दिया। माताओं को मैं खास कहूंगा ये बात सीखनी है। कई माताएं आजकल अपने बच्चों पर प्रेशर बहुत रखती हैं, इतने नंबर लाने ही हैं, न बेचारे को टीवी देखने देती, न खेलने कूदने देती, पढ़ो, चाय बना के रख देती हैं थर्मस में, रात को पढ़ो, नींद आए तो चाय पी लेना, खुद भी बैठ जाती है, एक लगा भी देती है, सो क्यों रहे हो, पढ़ो। ऐसे कोई बुद्धिमान नहीं बना करता। मेरे पास कई बच्चों की कहानी आती है, हमारे अपने परिवार की भी। मेरी भतीजी है, एमएससी कर रही थी फिजिक्स में, पढ़ती लिखती नहीं थी, घर में आके होमवर्क ही नहीं करती थी, उसकी माँ उसको रोज डांटती थी, टीवी देखती है, पढ़ती नहीं है, एमएससी का फाइनल एग्जाम है, ये है वो है। जब रिजल्ट आया तो उसने गोल्ड मेडल लिया था। तो बुद्धिमानों को रात दिन पढ़ने की जरूरत नहीं होती, इसलिए माताएं अपने बच्चों की बुद्धि का विकास करने के लिए उन्हें एनकरेज करें, उन्हें प्रोत्साहन दें, उन पे दबाव न डालें, उन्हें खुला माहौल दें, घर में खुशी का माहौल बनाएं। अगर आपके घर में क्रोध है, अगर आपके घर में सदा ही टेंशन रहती है, यदि बिना मतलब की परेशानियां हैं, तो बच्चों की बुद्धि का विकास नहीं होगा, चाहे वो रात दिन पढ़ें। तो ये माता पिता का कर्तव्य है अपने घर के माहौल को, बहुत एक खुला माहौल जिसमें खुशी के फव्वारे फूटते हों, जिसमें बहुत अच्छा माहौल हो, अपनेपन का आभास हो, ऐसे वातावरण का निर्माण करेंगे। एक्सपेक्टेशंस एक दूसरे से बहुत ज्यादा रहती हैं। संबंधों में आप चेक कर लें, हर व्यक्ति दूसरों से कुछ डिमांड कर रहा है, ये व्यक्ति मुझे सम्मान दे, ये व्यक्ति मेरी बात सुने, ये व्यक्ति मुझे आगे बढ़ाए। लेकिन आप सोच लें, जिससे आप सम्मान मांग रहे हो उनका अपना स्वमान तो पहले ही समाप्त हो चुका है, जिससे आप प्यार मांग रहे हो उनके प्यार के मटके तो पहले ही सूखे हुए हैं। एक व्यक्ति एक मटके से पानी निकाल रहा है, बार बार गिलास डालता है, कुछ निकलता ही नहीं, बार बार डाल रहा है, कुछ निकलता ही नहीं, वो डाल ही रहा है, पानी आता ही नहीं। क्यों नहीं आता? मटका सूखा हुआ है, सबके मटके सूख गए हैं। हम एक्सपेक्टेशंस न रख के देने का भाव रखें। बाबा ने अपने महावाक्यों में हम सबको खूब सिखाया, जो दोगे वो डबल होकर तुम्हारे पास आ जाएगा। सुख दो, डबल होकर तुम्हारे पास आ जाएगा। दूसरों को प्यार बांटो, तुम प्यार के भंडार बन जाओगे, तुम्हें प्यार की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। सम्मान दो, सम्मान पाओगे, सहयोग दो, 10 गुना सहयोग प्राप्त होगा। लेकिन आजकल के समय में लोगों में सम्मान भी काफी कम होता जाता है और सहयोग की भावना तो बहुत कम हो गई है। मैं सभी से कहूंगा, अपने बुजुर्गों का बहुत सम्मान करें सभी। पसंद है? पसंद है? एक छोटी सी कहानी हमारे यहाँ के अखबार में छपी। एक व्यक्ति, वो अपने माँ बाप से अच्छा व्यवहार नहीं करता था, वो बुजुर्ग हो गया था, बुजुर्ग हो गए थे दोनों। क्या करते थे ये? उनको एक अलग कमरा तो दिया हुआ था, मिट्टी के बर्तन रखे हुए थे, रोज मिट्टी के बर्तनों में उनके पास भोजन रखाते थे। इनका छोटा बच्चा ये देखता आता था 5-7 साल से। अचानक दोनों की मृत्यु हुई, दोनों की चिताएं जली, वो मिट्टी के बर्तन भी उनकी चिता के पास रख दिए। देखो क्या होता है, चिता को जैसे ही आग लगाई गई, ये बच्चा दौड़ा और वो मिट्टी के बर्तन उठा के ले आया। इसके फादर ने इसको बहुत डांटा, ये क्या कर रहे हो, क्यों ला रहे हो ये? इसने चुपचाप थोड़ी आवाज से उत्तर दिया, ये आपके काम आएंगे। माताओं ने नहीं समझा, समझ गए? जैसा व्यवहार हम दूसरों से करते हैं, बिल्कुल इस सृष्टि का, कर्मों का यही सिद्धांत है। जैसा व्यवहार हम दूसरों से करते हैं वही व्यवहार हमें प्राप्त अवश्य होता है। होता है या नहीं? ये अटल सिद्धांत है कर्म का, इसको कोई टाल नहीं सकता है, काट नहीं सकता है। हमें भी कभी बुजुर्ग होना है, इसलिए ठीक है बुजुर्गों से कई कठिनाई होती हैं बच्चों को, यह भी सत्य है। कई बुजुर्ग लोग ज्यादा गुस्सा करने लगते हैं, चिड़चिड़ करने लगते हैं, शांति नहीं रखते, कुछ बीमारियां भी ऐसी लग जाती हैं, बच्चों को भी कठिनाई होती है। और बहुत बच्चे हमने देखे अपने माँ बाप को आंखों पर रखते हैं बुजुर्ग स्थिति में, मैं खुद देखता हूं। तो हम एक सुंदर परंपरा की शुरुआत कायम रखें भारत की। वेस्टर्न वर्ल्ड में ये परंपरा नहीं है, पर हमारे भारत की कल्चर की ये ब्यूटी है कि यहाँ बच्चे अपने माँ बाप का बहुत सम्मान करते हैं। हम उनका आशीर्वाद भी लें सम्मान करके। सम्मान केवल पैर छूने से नहीं हो जाता, सम्मान एक दिल की भावना है। तो सभी अपने बुजुर्गों से परेशान नहीं होंगे। ये सत्य है कि कहीं कहीं परेशानी की स्थिति बनती है। बहनें भी आजकल जॉब में रहती हैं, अब वो अपने बच्चों को संभालें, जॉब करें या सास ससुर की सेवा करें, उनके लिए भी थोड़ी कठिनाई होती अवश्य है। लेकिन फिर भी यदि हमारी भावनाएं श्रेष्ठ होंगी तो हम ये सब करने में सक्षम हो जाएंगे। कामनाओं पे ध्यान दें। श्रीमद् भगवत गीता तो सारी ही निष्काम भाव पर लिखी गई है। आधी गीता में निष्काम कर्म योग, निष्काम भाव का वर्णन है। आज लोग उसे भूल गए, केवल गीता का पाठ तो थोड़ा बहुत करते हैं, आजकल तो वो भी नहीं रहे हैं लोग, लेकिन जो करते हैं वो उसके उन मूल सिद्धांतों पर, जो रहस्य हैं, ध्यान नहीं देते। कि हमें निष्काम भाव धारण करना है। आजकल की जो भाषा है नो एक्सपेक्टेशंस इंग्लिश का शब्द है, आजकल बहुत इस पे चर्चाएं हैं। ये हमारी श्रीमद् भगवत गीता में बहुत विस्तार से कहा गया है, अच्छे कर्म करो फल तो तुम्हें उसका अच्छा मिलेगा ही, लेकिन कामना नहीं रखो। किसी की सेवा करो, किसी की मदद करो, मदद करो और भूल जाओ, रिटर्न में हमें कुछ मिलना चाहिए, इसकी कामना न करें हम। देखिए बहुत अच्छे शब्द है, मैं बचपन से गीता का अध्ययन करता था, मुझे एक बात उसमें समझ में नहीं आती थी। हे अर्जुन, जो मनुष्य ये सोचता है मैंने यही अच्छे काम किए हैं, मैं यज्ञ करूंगा, मैं तप करूंगा, मैं दान करूंगा, मैं इतनों की सेवा करूंगा, हे अर्जुन ये भी रजो प्रधान कर्म है। मैं सोचता था इतने अच्छे अच्छे काम, यज्ञ करूंगा, तप करूंगा, सेवा करूंगा, दान पुण्य करूंगा, अगर ये रजो प्रधान कर्म है तो सत्व प्रधान कर्म कौन से हैं? मैं सोचता था छोटा था, कहीं से उत्तर तो नहीं मिलता था। जब यहां आए तो उसकी बहुत सुंदर व्याख्या प्राप्त हो गई, क्योंकि उसके पीछे ये भाव है कि मैं करूंगा। ठीक बात है ना, सूक्ष्म भाव है, मैंने किया और मैं करूंगा। चाहे किसी तपस्वी को यही हो, मैंने बहुत तप किया है, ये भी मैंपन है जो उसकी तपस्या की दिव्यता को लोप कर देता है। इसलिए हम सभी श्रेष्ठ कर्म कामना रहित होकर करें, ये नहीं कि हमने कोई अच्छा कार्य कर दिया और ये भी संकल्प कर लिया कि लोगों को पता तो चले ये काम मैंने किया है। एक अच्छे साधक को इससे भी ऊपर उठना होता है, और हम इसकी शुरुआत अपने अपने परिवारों से करें। आप अपने बच्चों के लिए जो भी अच्छा कर्म कर रहे हैं, उनकी पालना कर रहे हैं, उनको पढ़ा लिखा रहे हैं, ये आपका कर्तव्य है, एहसान नहीं। यही मनुष्य गलती करता है। कई माँ बाप अपने बच्चों को बार बार बोलते हैं हमने तुम्हारे लिए ये किया है, बार बार याद दिलाते हैं, बच्चों के मन पे बेचारों एक निराशा के बादल आते हैं, एक सटिल तनाव आ जाता है। इससे मुक्त हों, ऊपर उठें जरा, अपने विचारों को बहुत महान बनाएं। संबंधों में हमें बहुत मधुरस घोलना है। मैं कुछ बहुत प्रैक्टिकल बातें आपके सामने रख देता हूं। आज ही हम सब जब रोज ईश्वरीय महावाक्य सुनते हैं, आज जब सुन रहे थे सवेरे, उसमें एक लाइन बहुत ही गुह्य थी, श्रीमद् भगवत गीता में भी है, काम क्रोध तुम्हारे महान शत्रु हैं, इनके कारण ही आज समाज में अशांति है, टेंशन है। इसलिए आज संकल्प कर दें, यहां पाए हैं इस सुंदर स्थान पर, अच्छा लगता है ना सबको, वातावरण भी ठंडा है, बादल भी रोज आपको दर्शन देने आते हैं तो मन भी ठंडा हो जाए। क्रोध की अग्नि को शांत करके ही जाना है यहां से, कहने से काम नहीं होगा, लेकिन पहले हमें ये संकल्प अवश्य रखना होगा कि मुझे अपने क्रोध को डाउन करना है, क्रोध शत्रु है। मानते हैं आप सभी क्रोध शत्रु है, जलाता है। जहां संबंधों में क्रोध बहुत रहता है, बड़े बड़े कांड होते हैं, जीवन बिखर जाता है, डिप्रेशन होता है, बहुत सारे डिवोर्स इसके कारण हो रहे हैं कि एक को बहुत क्रोध है। मैं इस अहम के बारे में भी कुछ आपको एक चीज और कहना चाहूंगा। कल ही मेरे पास एक केस था, कोई व्यक्ति पिछले ग्रुप में आया था, उसने कहा मेरा लड़का और बहू दोनों की बनती नहीं है, क्या करें, बहुत अच्छा परिवार, दोनों बहुत अच्छे एजुकेटेड, लड़का और उसकी पत्नी। मैंने पूछा क्या कारण है कि दोनों ही बहुत पढ़े लिखे हैं लेकिन एक को सरकारी नौकरी है, एक को प्राइवेट, दोनों टीचर हैं, एक को सैलरी बहुत ज्यादा मिलती है दूसरे को कम मिलती है, इस पे है उनमें मनमुटाव। जिसको सैलरी ज्यादा मिलती है उसको अहम है, वो दूसरे को वैल्यू नहीं देता इसलिए उसको गुस्सा आता है। पत्नी को सैलरी ज्यादा मिलती है, पति को कम मिलती है, दोनों का अहम जागृत हो रहा है, नौबत यह आ गई कि दोनों साथ रहना नहीं चाहते, डिवोर्स चाहते हैं। अभी वो तो चाहते हैं लेकिन आप सोचते हैं जब पति पत्नी अलग हो जाएं उन पर क्या असर पड़ता है मानसिक, उनके माँ बाप पर क्या पड़ता है। दो परिवार हैं, दो से चार हैं, छह आठ परिवार हैं, सबकी शांति नष्ट होती है, सम्मान समाप्त होता है, उनके भविष्य की चिंता होती है, इनका क्या करें, अकेला रहना कितना कठिन है, अगर दो बच्चे हैं तो बट जाएंगे, कौन किसके साथ रहे, माँ बाप का प्यार नहीं मिलता। कितनी बड़ी बात होती है ईगो के कारण, और दोनों झुकने को तैयार नहीं है। मुझे एक कहानी और याद आ गई, ये भी दो तीन दिन पहले की है। माताएं ध्यान दें इस बात पर, बड़ी सूक्ष्म साइकोलॉजी है। एक बहन जिसको एक छोटा बच्चा 3 साल का, अब ये कोई PCS का एक कंपटीशन दे रही थी, इसने सोचा बच्चे को अपनी माँ के पास छोड़ाती हूँ कुछ समय के लिए, मैं स्टडी कर लूँ ताकि मुझे कोई बाधा ना पड़े। उसने तो ठीक ही सोचा, बच्चे को माँ के पास छोड़ाई और इसने अपनी स्टडी की। एग्जाम देने के बाद जब बच्चे को लेने गई ना वहां से, क्या हुआ होगा, क्या हुआ होगा, बच्चे पर माँ बाप से अलग रहने का इतना बुरा इफेक्ट हुआ कि बच्चा मानसिक रूप से बिल्कुल डाउन हो गया। वो हंसता नहीं है, उसके चेहरे पे मुस्कान नहीं है। जब माँ ने उसे उठाया तो वो उसकी गोद में आके आनंदित नहीं हुआ, जिसे मायूस हो गया है। मुझे पूछा क्या करूं अब इसके लिए, सब समझ ही गए, मैं भी समझ गया, तुमने उसको छोड़ तो दिया अपनी नानी, उसकी नानी के पास, लेकिन बच्चे को माँ बाप की पालना की सख्त जरूरत होती है। माँ का प्यार बच्चे के लिए बहुत बड़ा टॉनिक होता है। थोड़ा ध्यान देंगे संबंधों की इस बात पर। अब देखो क्या होगा, वही बच्चा जब बड़ा होगा तो उसके मन में वो एक मिसिंग रहेगी सदा के लिए, उसको एक डिप्रेशन का आभास होता रहेगा, उसको प्यार का अभाव फील होता रहेगा जीवन भर। तो एक छोटी सी बात ने कैसे उसके जीवन को प्रभावित कर दिया होता है। ध्यान देंगे सभी। मैं आप सभी को कहूंगा, मैं क्रोध की बात कर रहा था, आप में से कौन कौन भाई बहने हैं जिनको बहुत कम गुस्सा आता है, प्लीज, बहुत अच्छा, इनाम के पात्र हैं आप सभी। अरे वाह, तब तो आप देवता हैं जिसको आता ही नहीं। और जो अपने क्रोध को पूरी तरह छोड़ना चाहते हैं वो प्लीज हाथ उठाए, मैं विधि बताता हूं आपको। पर पहले क्रोध को जीतने की इच्छा होनी चाहिए। तो देखिए आपको, अब मैं एक सुंदर चीज की ओर ले चल रहा हूं जिससे आप अपने जीवन को चमका सकते हैं, संबंधों में प्यार मिठास घोल सकते हैं, और ये जो कटुता आज आ गई है संबंधों में उसको समाप्त कर सकते हैं। सवेरे जब हम उठते हैं, आंख खुलने के 10 मिनट तक, ये 10 मिनट का समय हमारे लिए बहुत बहुत सुंदर समय है, इसकी ब्यूटी को आप समझ लेंगे आज। इसलिए हमारे भारत में हिंदू धर्म में क्या कल्चर थी, लोग उठते ही मंदिर में जाते थे, लोग घरों में ही मंदिर बना लेते थे, आंख खुली सीधे मंदिर में, ताकि पहले जो विचार हैं सुंदर हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जब हम आंख खोलें तो हमारे पहले विचार बहुत सुंदर हो, उनका इफेक्ट हमारे पूरे जीवन पर पड़ता है। मैं आपको कुछ बहुत प्रैक्टिकल चीज भी इसमें सुना सकता हूं, ऐसे ऐसे सुंदर अनुभव हैं समाधान के कि जिसको सुनकर आपको लगेगा इतनी सहज बात है, क्यों मनुष्य नहीं कर पाता है। 10 मिनट में पहले 3 मिनट आप रोज बहुत सुंदर विचारों में व्यतीत करेंगे। आज से अपने मन को तैयार करें, थोड़ा जल्दी उठकर पहले 3 मिनट, हो सके तो 10 मिनट सुंदर विचारों से अपने को चार्ज करें। देखिए क्या होता है, लोग लेट उठते हैं। आप में से भी जो ये गलती करते हो वो आज से इसको करेक्ट करेंगे। 8 बजे उठे, 9 बजे उठे, टेबल पे अखबार आ गया है, आंख खुली अखबार देखा, क्या होगी अखबार में पहली हेडलाइन, कश्मीर में आतंकवादियों से मुठभेड़, इतने लोग मारे गए। उठते ही पढ़ लिया एक अशांति का समाचार, अंदर क्या चला गया, सभी इस राज को ध्यान दें। सवेरे 10 मिनट हमारा सबकॉन्शियस माइंड जगा हुआ है, जिसको चित्त कहते हैं। हमारे शास्त्रों में इसकी बहुत सुंदर चर्चाएं हैं, चित्त। महर्षि पतंजलि ने भी कह दिया, चित्त की वृत्तियों का निरोध करो, यही योग है, अर्थात चित्त की वृत्तियों को शुद्ध करो। तो सवेरे हमारा चित्त, हमारा सबकॉन्शियस माइंड, हमारा अंतर मन जगा हुआ है। जो आप पढ़ेंगे, जो सोचेंगे, जो विजन बनाएंगे, वही जीवन हो जाएगा। इस सिद्धांत को याद रखते हुए अखबार नहीं पढ़नी है उठते ही, नहीं तो आप बिना मतलब अशांति और टेंशन को अपने घर में जैसे स्थान दे रहे हैं। 10 मिनट के बाद सब कुछ करना चाहिए, 10 मिनट सुंदर चिंतन में करें। और अब आप राजयोग सीख रहे हैं तो मैं आप सभी को कहूंगा कि सवेरे उठते ही पहले ही विचार से आप प्रभु मिलन का सुख लेना सीख लें। हम लोग बहुत अच्छे अभ्यास करते हैं। देखो मैं अपना अनुभव सुनाऊं, आंख खुली, हम लोग 4 बजे उससे पहले ही उठ जाते हैं, कभी 3 बजे, कभी उससे पहले। आंख खुली एक नेचर बन गई है, अपने परम पिता को सामने लाकर गुड मॉर्निंग करना, वो निराकार है लेकिन वो ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर द्वारा कार्य करते हैं। और मुझे तो बहुत अच्छे अनुभव हो गए, उसको नमस्ते किया उठते ही, नमस्ते करते उसका वरदानी हाथ मेरे सिर पर आ गया और उसने कोई वरदान भी दे दिया। सवेरे का ये पहला मिनट जीवन को आनंद विभोर करने वाला होता है, लेकिन थोड़ा जल्दी उठकर। दूसरा संकल्प आप सभी करें, हे प्रभु, हम शिव बाबा ही कहते हैं, आपने मुझे सब कुछ दिया, आपको बारंबार शुक्रिया। सच्चे मन से, डबल माइंड ना हो, मुझे कम दिया उसको ज्यादा दिया, उसको भी कम देना था। आजकल लोग ये भी करते हैं ना, भगवान से मांगते हैं मुझे ज्यादा दो, पड़ोसी को कम। ए सिंगल थॉट, आपने मुझे सब कुछ दिया, आपको कोटि कोटि बार शुक्रिया। बोलो ये पसंद है या नहीं, दिया दिया या नहीं दिया। अगर आपने उठते ही सोच लिया है भगवान आपने मुझे गरीब बना दिया, तो क्या हो जाएगा, समझो गरीबी को आपने निमंत्रण दे दिया, आ जाओ। सवेरे के विचार आपके लिए अमृत तुल्य हैं, वरदान हैं। माताओं को मैंने बहुत कराया और बहुतों ने कर लिया है, अपने छोटे बच्चों को नींद से उठाओ, उनसे 3 बार बुलवाओ, मैं बुद्धिवान हूं, मैं चरित्रवान हूं, मैं एकाग्र चित्त हूं। लाखों केस हो गए, बच्चों की बुद्धि का विकास हो गया, वो चरित्रवान बन गए, बहुत शक्तिशाली हो गए, बुद्धि उनकी स्थिर होने लगी। दो चार के अनुभव नहीं, लाख में पहुंच गए हैं। बहुत माताओं ने कर दिया, इसलिए सवेरे उठकर सुंदर विचारों से अपना श्रृंगार करेंगे। अगर आपको लगता है, अब कुछ बातें ध्यान से सुन लेंगे, अगर आपको लगता है भाग्य साथ नहीं दे रहा है, तो उसी टाइम संकल्प कर दो, मैं बहुत भाग्यवान हूं, मेरे जैसा भाग्यवान तो कोई नहीं। आपका सोया हुआ भाग्य जगमगाने लगेगा। पांच पांच बार करना है, 21 दिन करना है, एक एक थॉट ले सकते हैं। आपके पास धन की बहुत कमी है, बिल्कुल अपने मन से निकाल दो, मैं निर्धन हूं, धन की कमी है, मैं बहुत धनवान हूं, हे भगवान आपने मुझे बहुत धन दिया, आपको बारंबार शुक्रिया। धन के द्वार खुल जाएंगे। अनुभव करके देखो ये सब। आपको लगता है कि जीवन में आपको सफलता नहीं मिल रही है, जो युवक यहां बैठे हैं वो ध्यान से सुन लेंगे, इसके भी लाखों एक्सपेरिमेंट हमने कराए हैं युवकों से, बिजनेस वालों से, दुकानें ठीक नहीं चल रही उनसे, कोर्ट केसेस में, बीमारियों में। पहला संकल्प, एक बहुत सुंदर संकल्प है जो अभी तक मैंने आपको बताया नहीं, हम सर्वशक्तिवान भगवान के बच्चे हैं, है ना, सभी हैं। तो हम शक्तिशाली हैं या कमजोर, बोलो। टाइगर का बच्चा क्या होगा, उसे बताना पड़ेगा तुम टाइगर हो, बिल्कुल नहीं। हम भी सर्वशक्तिवान के बच्चे हैं, हम बहुत शक्तिशाली हैं। पहचाने आप अपनी इनर पावर्स को, हम कमजोर नहीं, बहुत शक्तिशाली हैं। तो सवेरे उठते ही आप संकल्प करेंगे, मैं सर्वशक्तिवान की संतान, बहुत शक्तिशाली हूं, सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। सफलता मिलने लगेगी। पांच बार कर ले रोज सवेरे, 21 दिन करने से बहुत अच्छा होता है, पर 7 दिन में काफी गुड रिजल्ट दिखने लगेंगे। आपको लगता है कि जीवन में विघ्न ही विघ्न आ रहे हैं, ध्यान देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। बहुतों को लगता है एक बीमारी जाती है, दूसरी आ जाती है, मुश्किल से उसको निकालते हैं, तीसरी आ जाती है, बीमारियों का सिलसिला चलता ही आ रहा है। परिवार में विघ्न, एक आया, दूसरा आया, तीसरा आया, चौथा आया, हम तो दुखी हो गए विघ्नों को देख देख के। विघ्न विनाशक गणेश जी की पूजा भी बहुत कर ली, पर विघ्न हटने का नाम नहीं ले रहे हैं। मैं सोचता हूं गणेश जी किसके पुत्र, किसके, शिव के, और हम किसके, तो क्या हम में उसकी शक्तियां नहीं हैं? हैं, हम में भी विघ्नों को नष्ट करने की शक्तियां हैं। तो सवेरे उठते ही आप ये दो संकल्प जोड़ कर करेंगे, मैं सर्वशक्तिवान की संतान, बहुत शक्तिशाली हूं, विघ्न विनाशक हूं, ध्यान देंगे, मैं विघ्न विनाशक हूं, मेरे जीवन के सभी विघ्न नष्ट हो गए हैं, मैं निर्विघ्न हूं। आप पाएंगे विघ्न हटने लगे। तो सवेरे उठकर संकल्पों के द्वारा आप अपने जीवन में बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं, केवल संकल्पों के द्वारा। थोड़ा जल्दी उठेंगे और सुंदर संकल्प क्रिएट करेंगे अपने मन में। ये बहुत सुंदर बात आप सभी साथ ले जाएं आज से, अटेंशन से सुन लेंगे, जीवन भर काम आएगी। हमारे हर संकल्प में क्रिएटिव एनर्जी है, समझते हैं ना इंग्लिश का शब्द सभी, कौन सी एनर्जी है, निर्माण शक्ति, हिंदी में रचनात्मक शक्ति है। तो क्या होगा, जो संकल्प हम बार बार करते हैं, उसका निर्माण होता है। बहुत ध्यान देंगे, जो संकल्प हम बार बार करते हैं उसका निर्माण करते हैं। जो युवक स्टूडेंट बैठे बहुत ध्यान दें, आप सोचने लगे मेरे इतने मार्क्स आएंगे ही नहीं, बहुत गड़बड़ हो गई, होगा ही नहीं, तो आप उसका ही निर्माण कर रहे हैं। मैंने ऐसे ऐसे बच्चों को भी देखा जिन्होंने मुझे बताया पेपर खराब हो गया है, क्या करूं, मुझे तो इतने मार्क्स चाहिए थे, पेपर खराब हो गया है। मैंने उसको कॉन्फिडेंट किया, नहीं, रोज सवेरे उठ के संकल्प करो मेरे इतने नंबर आएंगे भले पेपर खराब गया है। ये संकल्प हटा दो कि पेपर खराब गया इसलिए नंबर बहुत कम आएंगे, और आप हैरान होंगे उतने ही नंबर आ गए। क्योंकि जो एग्जामिनर होते हैं ना कॉपी चेक करने वाले, वो एक एक चीज बिल्कुल नहीं पढ़ते। अगर घर में पत्नी से लड़के आए और कॉपी चेक कर रहे हैं, है गुस्से में, है क्या लिखा है, बेकार, और थोड़ा सा भी अच्छा हैंडराइटिंग, एक दो लाइन पढ़ा, वेरी गुड, इतने नंबर, 10 में से 8, नहीं तो 10 में से 4। इसलिए बहुत गड़बड़ होती है। मुझे तो एक ने बताया कॉपी चेक करने वाले ने कि भाई हमें तो हर कॉपी के 50 रुपए मिलते हैं, हम तो चाहते हैं एक दिन में अधिक से अधिक कॉपी पार कर दें। अब बोलो वो कितना पढ़ते होंगे, समझ गए ना हमारी एजुकेशन का हाल क्या है। अब मैं फिर वहीं आ जाता हूं, हमारे हर संकल्प में क्रिएटिव एनर्जी है। इसलिए अब से ही सभी भाई बहने एक सुंदर संकल्प कर दें, मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। पसंद है ये संकल्प, सबको पसंद है ना, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। मेरे साथ सब कुछ बहुत, बोल दो जरा एक बार, प्रकृति भी सुन ले। टाइम तो कम रह गया है पर मैं राज बता दूं, महात्माएं बहुत बैठे हैं, सब जानते हैं, ये संसार का खेल प्रकृति और पुरुष के मिलन से चलता है। पुरुष माना आत्मा, और ये प्रकृति हमारे चारों ओर, सभी ये राज समझ लें आज, कि जो कुछ हम सोचते हैं उसकी तरंगें प्रकृति में जाती हैं, प्रकृति और उन तरंगों के बीच रिएक्शन होता रहता है, और वही चीजें डबल होकर हमारे पास आती रहती हैं। इसलिए अपने भाग्य के निर्माता हम स्वयं हैं। जो कुछ हमें प्राप्त है उसका आधार हमारे संकल्प हैं, कर्म तो होते ही हैं पर उनसे भी पहले संकल्प। इसलिए अपने संकल्पों को निगेटिव नहीं होने देंगे, क्योंकि हर संकल्प में क्रिएटिव पावर है, जो सोचेंगे वो क्रिएट होगा। इसलिए बी पॉजिटिव। पसंद आया, आज से मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा, बिल्कुल मृत्यु भी पास हो ना तो भी यही कहो बहुत अच्छा होगा, जिंदा हो जाएगा। अभी अभी मैं नीचे से आया हूं, शांतिवन हमारा बड़ा आश्रम है, एक लड़का मेरे साथ साथ चलने लगा, कहा एक अनुभव सुनाना भाई जी। मैंने कहा जल्दी सुनाओ, मुझे जाना था। कहा मेरी कोई चेकअप होता है मेडिकल में, वो 800 पर आ गया और डॉक्टर ने कहा तुम्हारा जीवन केवल 1 घंटे का बचा है, किसी को याद करना हो तो कर लो, किसी को फोन करना हो तो कर लो। इसने कहा कौन है तुम्हारा, उसने कहा कोई नहीं, केवल एक भगवान, उसको मैंने फोन कर दिया है, उससे मैं मिल लेता हूं, मुझे किसी को नहीं बुलाना है। और उन्होंने मुझे ऐसी रूम में रख दिया आईसीयू में जहां 1 घंटे के बाद उसकी मृत्यु निश्चित है। अगले दिन बड़ा डॉक्टर आया देखने के लिए कि मर गया होगा, देखा ये तो जिंदा है, और जब वो चीज चेक कराई तो वो 24,000 थी, 800 की बजाय रात रात में कहां पहुंच गए, 24,000 बिना कुछ खिलाए पिलाए। ये है ईश्वरीय शक्ति का चमत्कार, ये है संकल्पों का चमत्कार। अभी अभी मुझे मिला है, मैंने कहा तो तुम्हें नए जन्म की बधाई, अब तुम्हारा यह नया जीवन शुरू हुआ। और उसने भी सोच लिया कि जीवन मुझे भगवान ने दिया है, अब उसकी सेवा में ये जीवन अर्पित है, मैं अपने लिए इस जीवन में अब कुछ भी नहीं करूंगा। तो लास्ट बात मैं आपके सामने रख रहा हूं, हम सब भगवान के बच्चे हैं। डिफ्रेंशिएट करेंगे आप भगत या बच्चे, आप कहेंगे दोनों ही तो अच्छे होते हैं, कैसे न कहें हम भगत नहीं हैं। भक्त सदैव भगवान से मांगते हैं, और मांगने वाले को आप क्या कहेंगे? और बच्चे मांगते हैं या अधिकारी होते हैं? जेब पकड़ लेंगे आपकी, पापा निकालो जो कुछ है जेब में, करेंगे या नहीं? वो अधिकारी होते हैं। हम भगवान के भक्त तो रहे, बहुत अच्छी बात थी, नो प्रॉब्लम, लेकिन अब उसके हम बच्चे हैं, उसके बच्चे बन जाओ। और रोज सवेरे उठ के इस तरह चिंतन करना, मेरा परम पिता प्यार का सागर है, मैं भी प्यार से भरपूर हूं, आज सारा दिन प्यार बांटूंगा। मेरा परम पिता शांति का सागर है, मैं भी शांति से भरपूर हूं, आज का पूरा दिन शांति से व्यतीत करूंगी। शब्दों पे ध्यान देंगे, हे भगवान शांति दो, ये नहीं वो कहेगा अशांत तुम खुद हुए और मेरे द्वार पर आ गए, शांति तुम्हारे अंदर है, उसको जागृत करो। मेरा परम पिता सर्वशक्तिवान है, मैं भी बहुत शक्तिशाली हूं, समस्याओं से घबराने वाली नहीं, माया से घबराने वाली नहीं, उसको जीतने वाली, उसको परास्त करने वाली हूं। मेरा परम पिता सुखदाता दुख हरता है, मैं भी आज से सभी को सुख दूंगा। ठीक है ना बात? बहुत प्रैक्टिकल है। सवेरे उठ के पहले 10 मिनटों में अपने को इस तरह चार्ज कर लेना, संबंधों में अमृत घुल जाएगा, मधुरता भी नहीं अमृत, और जीवन की यात्रा का बहुत आनंद आएगा। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति।